job is to tell you the truth on 19th March, Wednesday. So the truth of this world is very, very shaking. It's not that very peaceful. And if you want to live a pure life in bhakti to the Lord. So pure life is not just easy. You have to work hard for that. For example, what is her name? Jasmin. Jasmin has long hair, right? Now to maintain her long hair as that whatever it is, it's not easy. You have to work hard for that. You have to clean on time. You have to put oil. You have to massage. You have to, so many things are there. You have to keep combing regularly, not to have what do you call that? Whatever is there. So whatever is great in life, whatever is good in life, to maintain that is not easy. But similarly, if you want to maintain pure consciousness with which you want to perfect your life in devotion to God, then you have to work hard for that. It's not easy. Agar kisi cheez ko aapko shuddh rakhna hai, mujhe aapke paas safed rang ki saadi hai, ya Punjabi dress safed rang ka, ekdam pure white. उसको व्हाइट रखना है आपको, व्हाइट ही रखना है, तो कितना मेहनत करना पड़ेगा आपको, कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना है, कौन सा सोप यूज करना है उसके लिए, कहाँ सुखाना है, दोरी पे धूल थी क्या, वो सब देखना पड़ता है आपको. इफ यू वांट टू रियली, यू कांट हैंग इट ऑन द ग्रिल, ग्रिल में इतनी धूल रहती है उसको, तो ऑलरेडी उस धूल से ऑलरेडी सफेद कपड़ा और खराब हो जाएगा. तो आपको सब देखना पड़ता है. फिर सफेद रखना आपको है उसको, तो आपको उसको बहुत सोच समझ के प्लानिंग करके सब कुछ करना पड़ता है. कपड़ा मुलायम है तो आपको लिक्विड सोप यूज करना पड़ेगा, सॉफ्ट सॉफ्ट सोप, नॉट हार्ड सोप. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं ना जो आपको करनी पड़ेंगी अगर आपको वो सफेद कपड़ा सफेद रखना है. उसी तरह से अगर आपका मन और आपका हृदय आपको स्वच्छ रखना है, तो अपने आप स्वच्छ रहेगा नहीं, वो दुनिया उसको हमेशा गंदा करती रहेगी. आप कभी भी अपने एक कपड़ा रखो उधर खिड़की पर रख दो, तो चार दिन उसको हाथ मत लगाओ, पांचवें दिन में क्या होगा, वो कपड़े पे बहुत बड़ी धूल जमा होगी ऑटोमेटिकली, किसी भी चीज पे, मोबाइल पे, इस पे, उस पे. तो बाय नेचर वर्ल्ड जो है, आपके अराउंड का वर्ल्ड जो है, वो आपकी चीजों को खराब करते रहता है, आपके मन को भी, आपके बुद्धि को भी, आपके कपड़े को भी, आपके शरीर को भी. नेचुरली अगर एकदम अच्छा शैम्पू लगा के, साबुन लगा के चार बार आज स्नान किया आपने, लेकिन शाम को दोबारा आपका शरीर खराब होने वाला है, आपको वापस धोना ही पड़ेगा उसको. ऐसा नहीं बोलते थे मैंने कल चार बार लगाया था अब चार दिन नहीं लगाऊंगा, ऐसा होता है क्या? ना, नेक्स्ट डे यू हैव टू अगेन अप्लाई द सेम थिंग, मे नॉट बी फोर टाइम्स बट यू हैव टू अप्लाई अगेन. तो शुद्ध जीवन जीना है तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और शुद्ध जीवन को शुद्ध रखना है तो भी मेहनत करनी पड़ती है. तो मेंटेन दैट प्योरिटी ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट. And one of the most important ingredients to keep life pure is food. What you eat determines to large extent what your mind will be like. अगर आपके मन को, आपको आपके जीवन को शुद्ध करना है तो उसके अंदर अन्न जो है वो बहुत ज्यादा important है, क्योंकि अन्न जो है, जो आप खाते हो, जिस प्रकार से खाते हो, उस प्रकार से आपकी चेतना बनती है. जहां से खाते हो, जिस प्रकार से खाते हो, जो खाते हो, उसके अनुसार आपका मन हृदय बनता है, आपकी चेतना कॉन्शियसनेस बनती है. अगर आप शुद्ध शाकाहारी अन्न गलत जगह से खाओगे तो भी आपको अशुद्धि प्राप्त होती है ना. समझो शुद्ध शाकाहारी होटल में जाएंगे, एकदम शुद्ध शाकाहारी, उसमें कोई कांदा लहसुन भी नहीं मिलेगा आपको. लेकिन अगर वो शराबी आदमी बना रहे हैं, अगर वो व्यभिचारी आदमी बना रहे हैं, और वो मांसाहारी आदमी बना रहा है उसको अपने हाथ से शुद्ध शाकाहारी अन्न, तो भी उसको आपको कंटेमिनेट करेगा, वो आपको अशुद्ध करेगा. समझ आपको आया? एकदम जैन हॉस्पिटल होटल है वो, लेकिन कुक जो है वो रात को वेश्या के पास आता है और मांस खाता है, शराब पी के रात को अपना अपना काम करते रहता है, सुबह काम पे आता है, वापस हाथ पाव धो के वापस वो जैन खाना बनाता है. तो कैसे वो खाना शुद्ध हो गया बताओ? क्योंकि खाने में दो प्रकार की चीजें होती हैं. एक खाना जो आप देख रहे हो, चावल दाल सब्जी रोटी जलेबी पकौड़ा जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है वो आपको आंखों को दिखाई पड़ रहा है, और दूसरा है वो खाने के पीछे की भावना, और खाने के पीछे की भावना और वो खाना दोनों का परिणाम आप पे होता है। जो खाना है उसका वजह से आपका शरीर का पुष्टि होता है या शरीर को रोग प्राप्त होता है, फॉर एग्जाम्पल उससे आपको शरीर को शक्ति मिलेगी या तो इन्फेक्शन मिलेगा, दोनों में से मिलेगा। और वो भावना जो है उससे आपके मन को पुष्टि मिलेगी या मन को रोग लगेगा, पाप का या गलत भावना का, दोनों आपको अफेक्ट करेगा। अगर खाने के पीछे भावना बहुत अच्छी है तो आपको अच्छा लगेगा, बहुत आपका पुण्य बढ़ेगा, आपकी शुद्धि बढ़ेगी। और खाने के पीछे भावना अगर गलत है, पाप भावना है या पापी व्यक्ति ने बनाया है, तो आपको उसका असर होगा आपके ऊपर। यहां तक कि समझो, फॉर एग्जाम्पल अभी आपका जो कुक है वो भी वैष्णव है, वो भी एकदम प्योर लाइफ जीता है, खुद भी वो ऐसे ही रहता है, वो चाय भी नहीं पीता है, वो भगवान का नाम का जप करता है वगैरह वगैरह, लेकिन वो चोरी से कमाया हुआ जो अन्न है, पैसा है, उससे खाना बनाता है, ये चीटिंग करके या तो स्मगलिंग करके, व्हाटएवर चीटिंग करके जो गलत काम से कमाया हुआ पैसा है, वो पैसे से लाया हुआ अन्न जो है वो अगर बनाता है तो भी आपके ऊपर उसका असर होगा, क्योंकि सोर्स क्या है उसका, किस जगह से वो अन्न आया है, किस कारण आया हुआ है। इसलिए अर्जुन के दुर्योधन के घर पे जब भगवान गए थे भोजन करने के लिए, तो दुर्योधन ने बहुत बढ़िया सा एकदम 56 आइटम बना के रखे थे, एकदम हाई क्लास, किंग था ना वो, इज अ किंग, वहां जैसा नहीं था वो, अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं था वो, इज अ ग्रेट किंग ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान ने कहा कि दुष्ट अन्न न भोक्तव्यम, जहां दुष्ट प्रवृत्ति है वहां पर मैं अन्न नहीं खाऊंगा, क्योंकि दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों का अन्न खाएंगे, दुष्ट प्रवृत्ति तुम्हारे अंदर भी आ जाएगी, समझना बहुत जरूरी है। दुष्ट वातावरण में भी आप शुद्ध अन्न खाएंगे फिर भी आपको दुष्ट वातावरण का परिणाम होगा। अगर आप दारू के अड्डे पर जाएंगे और शुद्ध शाकाहारी वैष्णव प्रसाद खाएंगे तो आप क्या कह सकते हो, क्या ये मेरा नहीं खाना, अभी तो मैंने बढ़िया खाया था, लेकिन कैसी जगह पर खाया, उसका भी प्रभाव होता है कि नहीं। अगर इस जगह पर आप बैठ के, सब लोग शराब पीते हैं, दारू पीते हैं और नॉनसेंस बात करते हैं और व्यभिचार करते हैं, और उस जगह पर मैं आया प्रवचन करने के लिए, तो मुझे भी उसका परिणाम होगा मेरे मन पे, क्योंकि वो वाइब्रेशन है ना मेरे ऊपर असर करते हैं। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? सब जगह कर्म है प्रभु। चोर बाजार में आप जाएंगे बोलेंगे कि 250 रुपए का ट्यूबलाइट 50 रुपए मिलता है, और आप वहां जाके खरीदेंगे, तो आप सब भी कर्म के भागीदार होंगे, क्योंकि तो किसी के घर के चुराया हुआ ट्यूबलाइट है वो। जिस व्यक्ति ने 250 रुपीज खर्च करके घर पे लगाया था, चोर ने उसको चुराया और चोर बाजार में लाके आपको 50 में बेच रहे हैं, और आप वहां से जाके खरीद रहे हैं, तो सारा कर्म आपको भी लगेगा, क्योंकि आप वहां जाके खरीद रहे हो, आपको पता है ये चोर बाजार है। जैसे हम हॉस्टल में रहते ना, हॉस्टल में हमारे हॉस्टल के पास भी था चोर बाजार, जे हॉस्पिटल के पास, हमारा ट्यूबलाइट सब वहां से आता था, सस्ते में एकदम। बाद में मालूम पड़ा चोर बाजार का मतलब क्या होता है, सब चोरी का माल रहता है, एवरीथिंग चोरी का माल, पक पॉकेट किया हुआ चोरी किया हुआ माल रहता है, उधर आके उसको बेचते हैं, वो उधर सस्ते में बेच डालते हैं। एवरीथिंग इज कर्मा, मतलब दुनिया में हर एक चीज में कर्म है, आपको पता हो, आप मानते हो, विश्वास हो, नहीं हो, कर्म तो सब जगह पे लगे रहते हैं। अगर आप ट्रैफिक रूल को मानते हो या नहीं मानते हो, जब आप सिग्नल तोड़ते हो तो आपको अरेस्ट किया जाता है। मैं सिग्नल में विश्वास नहीं करता, आई डोंट बिलीव इन सिग्नल्स, बोला डोंट बिलीव बट गो इन जेल, प्लीज गो इन जेल, देयर इज अ रूम फॉर यू बुक्ड ऑलरेडी, ऐसा है वो। तो यहां दुनिया में रहना है तो ये सब अपने ऊपर होने वाला है। इसलिए क्या करते भक्त लोग, अभी देखो जो सब्जी आती है ना, कभी कि 5 बजे ना दादर में कभी जाना, सुबह 5 बजे 4:30 बजे कभी 5:30 बजे जाएगा, जब मार्केट लगता है ना पूरा होलसेल वाला, तो जाना आप, जितने भी सब्जी के ट्रक आते हैं ना, जितने भी लेबर उसको सामान को उतारते हैं, सब ड्रंक रहते हैं, पूरे फुल ड्रंक, उसी पर सोते हैं, जहां नासिक से आते हैं वहां रात को सोते सोते आते हैं, उनकी उनकी दारू का सब जो भी कुछ है कचरा उसमें गिरते रहता है, वो चप्पल पे चलते रहते हैं उसके ऊपर, आप जो भोपड़ा खरीदते हैं जो सबके ऊपर चलते रहते हैं चप्पल पहन के, वो सब उतारते हैं सुबह, फिर हम लोग उसको खरीदते हैं। इस तरह से ये जीवन का हर चीज अशुद्ध है, हवा भी अशुद्ध है, पानी भी अशुद्ध है, क्या आपको बोलना है बोलो, हर चीज मिक्स में है, कोई नेचुरल है ही नहीं इधर चीज। तो कम से कम हमको अपने घर पे अपने आप को बचाने के लिए भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम जपेंगे और कम से कम शुद्ध चीज़ें खरीद के भगवान को अर्पण करके, प्रेम से अर्पण करके खाएंगे तो हम थोड़ा बहुत बच सकते हैं, इसमें से बहुत सारा बच सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमारी जितना शुद्ध नहीं है तो फिर हमको असर करेगी करेगी, क्योंकि बाकी सब चीज़ तो अशुद्ध है ना। मैं भक्ति भावना से अगर भगवान को अर्पण करूंगा तो मेरा चित्त शुद्ध है और मैं भगवान का भजन बहुत प्रामाणिकता से करता हूँ, एकदम सिंसियरली करता हूँ, तो मेरे सिंसियरिटी को देख के भगवान मुझे शुद्धता प्रदान करेंगे। लेकिन मैं भी बहुत ऐसा चापलूसी भक्त हूँ, मतलब हाफ भक्त हूँ हाफ चालू आदमी हूँ, तो मेरा भजन में भी त्रुटि आ गई ना, उसके अंदर भजन भी दूषित हो गया मेरा, तो भगवान को अर्पण किया वो कृति भी दूषित हो गई, तो मेरा प्रसाद भी वैसे ही रहेगा। इसलिए प्रसाद भी कौन बनाता है, कोई ब्राह्मण भक्त बनाता है या गुरु महाराज बनाते हैं या मंदिर के पुजारी बनाते हैं, उसके अंदर बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ पर मैं टर्न करके आया ना, वहाँ पर अयापा का मंदिर है, वहाँ पर आगे जाएंगे तो एक उड़पी का मंदिर है, वहाँ पर सब ब्राह्मण लोग जो पुजारी हैं मंदिर के, वही भगवान का भोजन बनाते हैं, सब लोग नहीं बना सकते, वो रसोई में केवल वो ब्राह्मण लोग ही जाएंगे और वो अपने हाथ से बनाएंगे तो ही भगवान को अर्पण कर सकते हैं। वहाँ का आप शादी में जाएंगे प्रसाद खाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा पूरा, क्योंकि वो लोग भी अपना लाइफस्टाइल उनका ऐसा ही है, प्योर लाइफस्टाइल है, वो बिजनेस के लिए खाना नहीं बनाते, वो केवल भगवान के लिए ही उनका बनता है। शादी भी आप वहाँ मंदिर में करेंगे तो वो मंदिर का शादी का रेट नहीं लगाएंगे आपको, मतलब वो मंदिर का जो भी है वही लगाएंगे, 90 रुपये में आपको 12 आइटम मिलेंगे, 90 रुपये 12 आइटम कौन देगा आपको आज से। लेकिन मंदिर में आप शादी करेंगे उड़पी के, उनके फिक्स आइटम है, वो 12 आइटम 90 रुपये में आपको मिलेंगे पेट भर के, आप खिला सकते, क्योंकि उनका हेतु भी अच्छा है, उनका बिजनेस का हेतु भी नहीं है, उनका चीटिंग का हेतु भी नहीं है, वो सिंसियर हेतु है, भगवान के लिए बनाते हैं। इसलिए भोजन जो है ना, भोजन वो हम लोग क्यों खाते हैं आपको पता है, एक है बल, आपको बल चाहिए, यू वांट स्ट्रेंथ। सेकंड क्या चाहिए, आयु, यू वांट लॉन्ग हेल्दी लाइफ। थर्ड थिंग क्या है, स्वाद, बिकॉज यू ऑल्सो नीड टेस्ट, यू कैन नॉट जस्ट ईट एनीथिंग टू स्टम फिल योर स्टमक, बीच में टंग बचा है ना, टंग, वो टंग बोलता है आपको ये नहीं ये चाहिए वो चाहिए, अच्छा है बुरा है, साउथ इंडियन अच्छा है नॉर्थ इंडियन अच्छा नहीं है, पनीर इज नॉट गुड राइस इज गुड, बहुत सारा मन में चलते रहते हैं। तो एक है स्वाद, दूसरा है बल, तीसरा है आयु, चौथा है पर्पस खाने का, अच्छी चेतना, गुड कॉन्शियसनेस, गुड भावना, ये सब अन्न से प्राप्त होता है। ये चारों चीजें जब आपको अन्न देता है ना तो वो अन्न श्रेष्ठ अन्न है। When you get good taste, good strength, and what I told you, long life, दीर्घायु and good consciousness. When all four things you get, then purpose of eating is fulfilled. Otherwise, purpose of eating is not fulfilled. Mind is getting corrupted and body is loading to 110 kilos. And life is reducing. Only swad is there. But swad may be there, but strength may not be there. अगर आप पाव भाजी खाते हो या अगर आप कुछ रोड का कुछ खाते हो, चीज सैंडविच, तो खाली जबान को अच्छा लगता है वो, ना शरीर के लिए अच्छा है, ना माइंड के लिए अच्छा है, ना किसी के लिए अच्छा है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, डिवोटीज डू नॉट ईट इन रेस्टोरेंट्स। भक्त लोग कहते हैं रेस्टोरेंट में नहीं खाते, क्योंकि रेस्टोरेंट में कितना भी बड़ा रेस्टोरेंट रहेगा वो 5 स्टार रहेगा, एकदम फर्स्ट क्लास उसका सर्विंग स्टाइल रहेगा, वो रुमाल ग्लोव पहन के सर्विस करता रहेगा, लेकिन सर्विस करने वाला और बनाने वाला अगर शुद्ध नहीं रहेगा, क्योंकि आपको मालूम नहीं वो कहाँ क्या करता है दिन में, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ जाता है, हु नोज, नोबडी नोज, एंड यू ईट वेरी हैप्पीली ओवर देयर, यू आर रिस्किंग योर कॉन्शियसनेस, में आपका जो चेतना है ना वो आप दांव पे लगा रहे हैं अननोन एरिया में। जैसे आपके घर में अगर एक महीने का बालक है, एक महीने का बालक, आप उसको नर्दुला टैंक मैदान में छोड़ के आएंगे क्या? हमारे घर के पास है प्रभा देवी, बड़ा मैदान है शिवाजी पार्क, उसके आगे नर्दुला टैंक मैदान है, आपके एक महीने के बालक को आप वहां छोड़ के आ सकते हो? क्यों नहीं आ सकते हो? आपको मालूम है वहां पर हवा कैसी होगी मालूम नहीं, धूल भी उड़ती रहती है और कुत्ते भी घूमते रहते हैं वहां पर, बच्चे लोग साइकिल भी चलाते हैं उधर, क्या क्या होता है, क्रिकेट की मैच भी खेलते हैं, कितना तकलीफ है मेरे बच्चे को। तो आप अपने बच्चे को ऐसे दाव पे लगाएंगे नहीं किसी भी वातावरण में, आप उसको वहीं पर छोड़ेंगे जहां पर पूर्ण सुरक्षा गारंटेड है आपकी, आप सब व्यवस्था करेंगे। जैसे मेरी बेटी की शादी थी तो मेरी छोटी बेटी के लिए हमने सारी व्यवस्था ऐसे की थी कि डॉक्टर, मेहमाने की वाइफ, उनकी सर्व हमारी सर्वेंट और रूम और भोजन की व्यवस्था, फिट आएगा तो मेडिसिन, सब सेटिंग करके पूरा ऐसा एक पूरा अध्याय था हमारी लाइफ मैरिज के। इसमें कुछ पूरा चैप्टर उसका वार्षिक भानवी केयर ऐसा एक पूरा चैप्टर था उसके अंदर, उसका पूरा बकायदा उसको व्यवस्था किया था, तब हम लोग निश्चिंत होकर शादी में भाग ले सके थे। क्योंकि तो उसका देखभाल मॉर्निंग से नाइट से एकदम अच्छी तरह से रखा था हमने करके। ऐसे नहीं कि हो जाएगा, कोई देख लेगा उसको, क्या है इसमें इतने लोग हैं देख लेंगे कोई, ऐसा नहीं होता है वो। उसी तरह से आपकी चेतना जो है ना वो आपको भगवान तक पहुंचा सकती है। आपकी मनुष्य जीवन की चेतना जो है, यू आर कॉन्शियसनेस एज ह्यूमन बीइंग इज सो पावरफुल दैट इट कैन टेक यू बैक टू गॉड। सच अ पावरफुल लाइफ लॉर्ड हैज गिवन यू। सो इफ यू हैव टू मेंटेन दैट एज इट इज एंड इम्प्रूव ऑन दैट एंड ग्रो दैट, देन यू हैव टू हैव अ गुड प्लान। यू जस्ट कैन नॉट से कि एनीवेयर आई कैन ईट, एनीथिंग आई कैन डू, एनीवेयर आई कैन बी विथ एंड माई चेतना विल बी ऑल राइट, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, हम लोग क्या बोलते हैं, जैसा संग वैसा रंग। हाँ, यू आर लाइक द कंपनी दैट यू कीप, यू आर नोन बाय द कंपनी दैट यू कीप। आप किसके साथ बैठते हो, किसके साथ उठते हो, किसके साथ खाते पीते हो, किसके साथ बात करते हो, कौन आपका फ्रेंड है, उसके अनुसार आपकी भावना चेतना बनती है। यू आर नोन बाय योर कंपनी, हुम यू आर ऑलवेज टॉकिंग टू, मीटिंग टू, लिसनिंग टू, व्हाट यू हियर, इवन व्हाट यूर मोबाइल रिंग टोन इज, यू कैन मेक आउट हु यू आर। Now what rings when you call somebody, that also tells you what kind of person you are calling. कोई सेक्स सॉन्ग आएगा उसका, कोई गलत गंदा सॉन्ग आएगा उसके अंदर, या कोई भगवान का नाम का भजन आएगा उसके अंदर, या कोई पुराना ओल्ड फिल्मी लता मंगेशकर सॉन्ग आएगा। तो आपको पता है कि आप किसको कॉल कर रहे हैं, आपको तुरंत समझ में आता है कि what is the mind of that person, because he will choose a tune or tone as per his liking ना, and you can make out what is his liking। तो ऐसा है सब। इसलिए अगर आपकी चेतना को आपको बचाना है, अच्छी तरह रखना है, तो आपकी कंपनी आपको चूज करना पड़ेगा, किसके साथ समय बिताना है आपको चूज करना पड़ेगा, कौन सी कंपनी में आप काम करने वाले हो वो आपको चूजना पड़ेगा। गवर्नमेंट में कर रहे हो, म्यूनसिपैलिटी में करने वाले हो, मंत्रालय में करने वाले हो, तो आपको सोचना पड़ेगा कि वहां पर कैसे लोग बैठते हैं और क्या करते हैं। कॉर्पोरेट में बैठना है तो वहां पर कौन सी कंपनी में बैठ रहे हो, टाटा में बैठ रहे हो कि बिरला में बैठ रहे हो कि रिलायंस में बैठ रहे हो, ये अलग अलग है सब जगह, अलग अलग कंपनी का अलग अलग मूड है। कट थ्रोट प्रैक्टिस रिलायंस में मिलेगी आपको, टाटा बिरला में कुछ ऑनेस्टी कुछ ना कुछ थोड़ा सा मिलेगा एटिकेट आपको। सो वेर यू वर्क, वेर यू चूज, हुम यू गेट मैरिड विथ, विच फैमिली यू आर एंटरिंग इन टू रिलेशनशिप, वेर यू विच कॉलेज यू गो, अगर जेजे में जाएंगे तो एक मूड है, केई में दूसरा मूड है, साइन में दूसरा मूड है, और डीवाई पाटिल में तीसरा मूड है। हर जगह पर अपना अपना मूड है ना। कुछ कॉलेज में वो ड्रग एडिक्शन होता है, कुछ कॉलेज में बहुत पढ़ाई होती है, इतनी पढ़ाई होती है कि लोग आत्महत्या करते हैं टेंशन में आके, और कुछ कॉलेज में विंग्स के विंग्स चर्सी और ब्राउन शुगर एडिक्ट रहते हैं, मेडिकल कॉलेज में, आईआईटी में, सब जगह पे। तो कहाँ पे आप जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन सा काम करने वाले हो, हाँ कहाँ खा रहे हो, किसके हाथ से खा रहे हो, वो सब सब कुछ, कैसे पैसे कमा रहे हो, कौन से पैसे का अन्न खा रहे हो, कहाँ रह रहे हो, किसके साथ बात करते हो, ये सारी चीजों का परिणाम आपके चेतना पे होते रहता है। हरे कृष्णा, और उसके अनुसार आपको आगे का जीवन प्राप्त होता है। ये संत लोग जो शुद्ध चेतना प्राप्त करते हैं ना, उसके लिए उसको बहुत जन्म तक मेहनत करनी पड़ती है, इट्स नॉट इजी। तब जाके उनके शब्द में वो शक्ति आती है, जब वो कुछ बोलते हैं तो लोगों का हृदय ऐसा परिवर्तन हो जाता है। इतने वर्ड में शक्ति क्यों आती है उनके, क्योंकि इतना साल तक उसको उन्होंने बना के रखा है उसको। जैसे कोई गायक जो है ना, वो 50 साल रियाज किया है, वो एक आ बोलेगा तो भी सबका दिमाग हिल जाता है पूरा, क्योंकि 50 साल से रियाज किया उसने, तभी उसको आलाप लगाएगा तो सबके दिल हिल जाते हैं, आंसू निकलते लोगों के। वो कल बैठा नहीं गाने के लिए, वो 50 साल से 3 बजे उठ के खर्जातला आवाज जाऊं तो बस, तो सकाळ दिन वाजता सब सोते रहते, भी वो गाते रहते 3 बजे, क्योंकि 3 बजे वातावरण में एक शक्ति होती है, चेतना होती है, जो वो गले को शक्ति प्राप्त करती है। इसलिए जो होता है ना कॉक, क्या बोलते हैं उसको, मुर्गा, उसके गले में उस समय गुदगुदी होती है जिस समय वो हवा में वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन का संगीतकार लोग सब गायक लोग लाभ लेते हैं पूरा, वही उसी समय बैठ जाते हैं खरजातला आवाज चाड़ू, ऐसा ऐसा सब साइंस है हर चीज का। तो जब आपकी चेतना आईने की तरह, ग्लास की तरह स्वच्छ हो जाती है ना, तो उसमें क्लियर भगवान का अनुभूति आप कर सकते हो। शुद्ध चेतना से आप भगवान की अनुभूति यानी कि रियलाइजेशन ऑफ गॉड आपको आसानी से होता है शुद्ध चेतना में। तो जो व्यक्ति की चेतना बहुत शुद्ध है, उसको भगवान की अनुभूति हो रही है, उसके बाद में फर्क तो पड़ेगा ना कुछ करेगा तो। जो आमने सामने भगवान की अनुभूति कर रहा है, ऐसे जैसे आप बैठे मेरे सामने, जैसे आमने सामने भगवान की अनुभूति कर रहा है, उसके वचन में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वो सामने अमिताभ बच्चन को देख रहा है तो वो इस तरह की बातें करेगा ना, वो सामने कृष्ण को देखेगा तो उसके फर्क नहीं पड़ेगा उसका? उसके सामने ऐश्वर्या राय और सब ऐसे बैठे हुए हैं तो उसका बात में वैसे फर्क पड़ेगा? उसके आंखों के सामने हमेशा राधा कृष्ण का दर्शन हो रहा है तो उसके बातों में और लाइफ में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उसके संग में आप आओगे तो आपके लाइफ में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आग के सामने बैठे हो तो आपको गर्मी लगेगी ना, ठीक है? क्या चिंगारी आपके ऊपर भी आ सकती है, बाल पे आके गिर सकती है चिंगारी, क्या आप आग के सामने बैठे हो? तो इसलिए हमको चुनना है कि हम किसके सामने बैठे हैं। हमारे पुराने घर में ना, तीसरे वाले पे घर था मेरा, और घर के सामने ही एक साउंड सिस्टम का दुकान था। तो आदमी सुबह उठते 6 बजे दुकान खोलते ही चालू उसका म्यूजिक पूरा, फिल्म का गाना इधर उधर एवरी फुल टाइम यू नो चलता था उसका। तो मेरी बेटी जब छोटी थी तो मैं खिड़कियां बंद करके घर में कीर्तन लगाया करता था, अरे मेरे बेटे के कान में कीर्तन ही पड़े, वो नहीं पड़े जो, क्योंकि सोती रहती ना वो, सोती सोने के बाद भी वो सुबह सुबह बजता था म्यूजिक, रात तक बजता था। तो मैं उसको काउंटरैक्ट करने के लिए घर में कीर्तन लगाया करता था, उसी कीर्तन में वो सोती थी उठती थी उसी भावना में उसका। जब मैं सेकेंड टाइम मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो ऑल 9 मंथ्स शी वॉज अराउंड दैट प्रभुपाद स्पीकर, उसी के नीचे वो सोती थी ऑल 9 मंथ्स। तो आज भी मेरी बेटी जो है जब रोती है तो वही कीर्तन जब सुनती है तो शांत हो जाती है। इट्स अ साइंस है, इट्स नॉट बाय फ्लूक और चांस, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली मैंने वो स्पीकर घर में ऐसी जगह लगाया था जहां मेरी वाइफ सोया करती थी। तो रात को वाइफ सो रही है लेकिन बच्चा अंदर जो है सुन रहा है पूरा, बच्चा भी सोता होगा लेकिन जब भी बच्चा अंदर घूम रहा है तो उसको प्रभुपाद की आवाज सुनाई पड़ रही है कंटिन्यूअसली, और उसी आवाज की वजह से आज भी वो हमारे ये घर के अंदर लॉबी के अंदर वो स्पीकर लगा कर रखा है, जब भी हमको उसको वहां जाके बिठाते हैं वो शांत हो जाती है। ऐसा है, इसे एश्योरेंस जो आवाज मैंने गर्भ में सुनी थी वही आवाज है। तो यार पीसफुल सिक्योर सिक्योर माइंड है उसका। तो मनुष्य जीवन है ना, इसलिए बोलते ना कि गधे की तरह जिंदा नहीं चाहिए, यू शुड लिव इट लाइक ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग मतलब विद थॉटफुल, विद प्लानिंग, विद अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ, विचारपूर्वक उस जीवन को जीना चाहिए, तब जाकर इस जीवन का जो मकसद है ना वो सफल हो सकता है। तो बहुत लोग जीते हैं बहुत लोग मर जाते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है, क्या फर्क पड़ता है, हेलो और गेलो, मतलब ऐसे बहुत आते हैं वो चले जाते हैं, दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे रात होती रात में बहुत सितारे चमकते हैं, हु केयर्स उसमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक चांद आया तो उसके अंदर रोशनी आती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो वैसे हमें एक चांद की तरह बनना चाहिए कि हम आएंगे तो रोशनी आनी चाहिए, सब लोगों को प्रकाश से दिशा दिखनी चाहिए लाइफ में कहां जाना है, चांद की रोशनी इनफ है रात के लिए, चमचमाते तारों की जरूरत नहीं है उसके लिए, वो तारे चमचमाते रहेंगे लेकिन प्रकाश नहीं आएगा उससे, प्रकाश तो मून से ही आएगा। इसलिए अपनी चेतना को बचा के रखो, संभाल के रखो, ये मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, बहुत ही कीमती है, इसको किसी भी कीमत पर आप दांव पे लगा नहीं सकते। मुझे पहले पता नहीं था ये, मैं जानता था वैसे कि शराब पीना नशा करना बहुत खराब है और वो पाप का बड़ा एक स्तंभ है, उससे बहुत घन पाप होता है, इसे नहीं करना चाहिए। लेकिन एक स्वामी जी ने मुझे इसका गहर अर्थ बताया कि शराब पीने से एक्चुअल होता क्या, नशा करने से क्या होता है। उन्होंने कहा कि नशा करने से वो चेतना जो भगवान ने आपको दी है, जिसका कारण यह है कि आप उनको समझ सके, इसलिए आपको उन्होंने कुछ दिया है कि ये चेतना से आप मुझे समझ सकते हो। वो चेतना ऑल्टर हो जाती है जब नशा करते हो आप, है ना। अभी मैं अभी आपको अच्छी तरह से लग रहा हूं, अच्छे बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं दो पेक मार के अगर आ गए इधर, तो मेरा बात करने का ढंग पूरा अलग हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। और आप मेरे साथ, इतनी औरतें साथ में बैठ नहीं सकती हैं, आप लोग इनसिक्योर महसूस करोगे, पता नहीं सर क्या बोलेंगे अभी। क्योंकि जो चेतना सही जगह पर है वो पूरी गलत हो जाती है, पूरा उसका विचार करने का ढंग गलत, सब कुछ बिगड़ जाता है पूरा, वो अच्छा आदमी भी कुछ भी बकने लगता है उसके बाद में। तो वो रोज नशा करेगा तो रोज उसकी चेतना बिगड़ती जाएगी ना, रोज कुछ ना कुछ ना कुछ अलग अलग, वो ब्राउन शुगर पिएगा या तो हीरोइन मारेगा या तो दारू पिएगा या तो कोकेन या तो मैट्रिक्स नींद की गोलियां सब पिएगा, तो उसकी जो चेतना भगवान ने दी थी वो ऑल्टर हो जाएगी, और उस ऑल्टर चेतना से वो भगवान को समझ नहीं पाएगा उसके बाद में। आप दारू पिए आदमी से ये उम्मीद कर सकते हो कि भगवान के बारे में सब जानकारी उसको होगी और समझेगा वो सब कुछ? एक दारू पिए आदमी प्रवचन में आके बैठेगा तो सब समझ में आएगा उसको क्या क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं आएगा समझ में। आपको उम्मीद है कि इसको समझ में नहीं आएगा, तो नशे में, नशे मतलब क्या काम का नहीं है कुछ। हो अच्छे से अच्छा आदमी भी अगर नशे में है तो बोलेगा कि लोग हंसते हैं उसको देख के, उसको बाहर करते हैं, धक्का मार के भेज देते कि भाई नशे में है आज, ठीक नहीं। कोई कॉलेज का डीन है समझो, अचानक वो आपको 31 दिसंबर को नशे में मिलेगा तो लोग उसको देखे भी हंसेंगे, ये देखो हमारे सर, देखो फिर वो झूल रहे हैं, देखो अरे गिर गया ऐसे बोलेंगे। मतलब अच्छा आदमी बेकार हो जाता है, अच्छी चेतना जो भगवान को आपको मिला सकती है वो भगवान से दूर लेके जाती है। तो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा अपराध है, जो आपको कीमती वस्तु भगवान ने दी थी उसको आपने नशा करके स्पॉइल कर दिया। अपने बच्चे को आपने 1000 रुपये दिए पिकनिक जाने समय, तो उसे सिगरेट पिया उसका, तो आपको कितना दुख लगेगा। आपने 1000 रुपये दिए थे उसको ताकि वो अच्छी तरह से ब्रेड बटर जो भी कुछ है, बिस्किट जो भी रस्ते में जो मिलता है उसको अच्छा रोटी सब्जी खा सकेगा, लेकिन सबके सिगरेट पिया उन्होंने और लोगों से मांग के फिर खाना खाया, तो कितना गुस्सा आएगा आपको? क्योंकि आपको मालूम है कि वो 1000 कीमती रुपए के लिए आपने कितना मेहनत किया है। उसी तरह से मनुष्य जन्म देते समय भगवान ने आपको कितना बड़ा कृपा किया आपके ऊपर, कि ये मनुष्य का यंत्र आपको दिया है कि इस यंत्र में आप मेरे तक पहुंच सकते हो इस यंत्र के माध्यम से। बाय दी हेल्प ऑफ दिस मशीन ऑफ ह्यूमन बॉडी यू कैन रीच मी, दैट्स व्हाई गॉड हैज गिवन यू दिस मशीन एंड यू आर सिंपली मिस यूजिंग द मशीन फॉर एवरीथिंग एल्स बट फॉर द लॉर्ड, देन यू लूज एंड यू सफर ऑल्सो फॉर दैट। ये जघन्य पाप माना गया। मांस का भी वही है, मांस खाने से क्या खराब होता है? आप बोलेंगे मसल तो बढ़ते हैं एकदम, हाई क्वालिटी प्रोटीन्स, तुरंत वेट गेन होता है मेरा मसल का, लेकिन किसी के जीवन का नाश होने की वेदना उसके अंदर छुपी हुई है, कोई जानवर रो रहा है उसके लिए, रोया हुआ है उसके लिए, तब आपको मांस प्राप्त हो रहा है। इतनी वेदना आपने किसी को दी है, कितना कष्ट दिया है, इतना पीड़ा दिया है, तो उसका परिणाम भी होगा ना आपके ऊपर कि नहीं होगा? आपके मसल बढ़ेंगे जरूर, यू बिकम मिस्टर यूनिवर्स ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, सो मेनी सिंस विल बी अकोमोडेटेड। ऐसा है, और जो दर्द देगा उसको दर्द वापस आएगा, जो आप देते हो वो आपको वापस आता है, इट टर्न्स बैक टू यू। फिर प्रेम किसको दिया तो प्रेम मिलेगा, किसी को आपने हेल्प किया तो आपको हेल्प मिलेगा, किसी को इंसल्ट किया तो आपको इंसल्ट मिलेगा, किसी को दुख दिया है तो आपको दुख मिलेगा। ये कोई स्पिरिचुअल लॉ नहीं है, ये लॉ ऑफ द वर्ल्ड है, जिसमें आप जी रहे हो ना उसी वर्ल्ड का लॉ है। वॉट एवर यू गिव यू रिसीव, नथिंग ग्रेट अदर थिंग वॉट यू कांट रिसीव दैट, वॉट एवर यू हैव गिवन यू रिसीव। तो भगवान ने आपको इतना बड़ा चेतना दिया है, आपने अच्छा अभी व्यभिचार करने में क्या नुकसान है? कि जैसे ही आप किसी शादी के बगैर किसी के साथ संबंध करते हो, सबसे ज्यादा अपनी चेतना मलिन हो जाती है उधर, योर कॉन्शियसनेस गेट्स मोस्ट कंटेमिनेटेड, मोस्ट डर्टी व्हेन समबडी डज व्यभिचार। इवन परस्त्री का विचार भी, परपुरुष का विचार भी अपनी चेतना को नष्ट कर देता है। तो जीसस क्राइस्ट क्या बोलते हैं, एडल्ट्री इज समथिंग वर्स सिन, एडल्ट्री मतलब यही विवाह के बाहर जाकर संबंध करना। और बाइबलिकल टाइम पे ऐसे औरत को, ऐसे आदमी को पत्थर से खींच कर मारते थे और समाज के बाहर जाके उसको हद पार करते थे। इतना गलत चीज है वो कि वो रहेगी भी बीच में तो भी लोगों को माइंड खराब कर देगी ऐसे औरतों। बट केवल एक ही रास्ता बताया उन्होंने, इफ यू रिपेंट देन जीसस विल फॉरगिव यू। जब उसने रिपेंट किया मतलब पश्चाताप किया तो जीसस ने उसको माफ कर दिया। जब पश्चाताप के अश्रु भय मतलब पश्चाताप के अश्रु के साथ में आपका पाप भी धुल गया। लेकिन सच्चा पश्चाताप होना चाहिए, रियल रिपेंटेंस, नॉट शो बॉटल रिपेंटेंस, दंड से बचने के लिए किया हुआ रिपेंटेंस नहीं हुआ, हृदय से रिपेंटेंस हुआ। तो एक हो गया व्यभिचार, एक हो गया मांसाहार, एक हो गया नशा। वो जुए में क्या खराबी है? क्योंकि जुए का प्रॉब्लम वही है जो आप किससे लगाते हो, दुनिया में जो वस्तुएं हैं उसके पर आप दाव लगाते हो ना। आपको पैसा है या कोई गोल्ड कॉइन है या कोई आपका घर है, आपकी प्रॉपर्टी है, क्या आप इसमें से कुछ भी चीज आपकी नहीं है, सब चीज भगवान की दी हुई है। इज दैट राइट? आपको लगता है कि आपका पैसा है लेकिन आपको दिया किसने हो? वो पैसा कमाने के लिए बुद्धि किसने दी आपको? वो बुद्धि जो शरीर में है वो शरीर किसको किसने दिया आपको, है ना? और वर्ल्ड में रिसोर्स किसने दिया आपको? क्या आपके अंदर शक्ति है कि आपने कुछ बीज डाला तो उसका फल बनकर पेड़ से आएगा? भगवान ने दिया हुआ है, पृथ्वी को शक्ति दिया है। जब आप बीज डालोगे तो फिर वो बीज का इतना बड़ा फल बन के आपको मिलेगा और आप खाओगे उसे। इसका मतलब दुनिया आपको भगवान ने क्यों दी है कि आप दुनिया में रहो, मेरे द्वारा दिए गए वस्तुओं का इस्तेमाल करो, यूज द थिंग्स एंड रिसोर्सेज विच आई हैव गिवन यू, बट फॉर माई सर्विस एंड योर मेंटेनेंस प्लीज यूज इट, नॉट टू स्क्वांडर। जुए में खेलने के लिए नहीं बनाया उसको। तो जुए में खेलने से क्या होता है, आप सारी प्रॉपर्टी को नष्ट कर देते हो। जो भगवान ने आपके लिए जीवन को चलाने के लिए दिया था उसी सारी वस्तुओं को आप गलत काम में उड़ा देते हो, इसलिए जगन पाप है। जैसे आपका दिमाग है, आपको भगवान ने बहुत दिमाग दिया अच्छी तरह से, आपको बहुत याद रहता है, सोचने में आप बहुत होशियार हो, आपका आकलन शक्ति बहुत जबरदस्त है, आप निर्णय बहुत जबरदस्त ले सकते हो, आपका शार्प दिमाग है बहुत। वही दिमाग अगर आप शराब पियोगे, मांस खाओगे तो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, शार्प नहीं रहेगा वो, कुछ देर रहेगा लेकिन बाद में धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। अभी आप स्मोकिंग कर रहे हो, स्मोकिंग तो आप बोल रहे हो मैं 15 साल से स्मोकिंग कर रहा हूं, मेरे को चेस्ट का अभी एक भी बीमारी नहीं हुआ है। ऐसे मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि मैं 20 साल से 10 सिगरेट रोज पीता हूं, मेरे को आज तक कोई तकलीफ नहीं हुआ है। मैंने कहा तुम्हारा लंग इतना भगवान ने स्ट्रांग दिया है कि 20 साल 10 सिगरेट पीने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। अगर तुम नहीं पीते तो कितना अच्छा लंग होता आपका, है कि नहीं? इतना लंग आपने भगवान ने आपने इतना अच्छा दिया है, इतना करने के बाद भी आपका लंग चल रहा है, आपको तकलीफ नहीं हो रही आपको। अगर आप कुछ भी नहीं करते तो अपना लंग कितना अच्छा सवा आपको देता। और ऐसे लोगों को कुछ देर बाद कैंसर होता है क्योंकि तैयारी में रहता है वो, एक एक अल्वियोलस है ना वो बुझते जाता है, इट गोज ऑन क्लोजिंग 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 क्लोजिंग, इट बिकम्स ब्लैक एंड टार्ड, ऐसा है वो। तो दी हुई चीज को संभाल के रखना ये हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। भगवान ने आपको ये बहुत प्रेशियस मनुष्य का जीवन दिया है, उसको बहुत अच्छी तरह संभाल के रखना, उसकी वृद्धि करना, उसको बढ़ाना, उसको ग्रो करना और इस लायक बनाना कि उसके द्वारा आपको भगवान की प्राप्ति होगी। हाँ मिस्टर पाटने, राइट? इस चीज को ऐसे बढ़ाकर उतना तक लेके आएंगे आप तो उसी के माध्यम से आपको भगवान का दर्शन होगा। यू विल बी एबल टू परसीव द लॉर्ड इन दिस लाइफ ओनली एंड दैट इज वाई वी आर लिविंग दिस वर्ल्ड। हरे कृष्णा। महामंत्र का जप करने से इससे हम बाहर निकल सकते हैं क्या, ये आपका प्रश्न है। उसका उत्तर यह है कि अगर आप महामंत्र का जप करेंगे और सारे पापों को छोड़ देंगे तो उसका पूरा असर मिलेगा। लेकिन आप महामंत्र का जप करते हुए बाकी पापों को चालू रखेंगे तो उसका पूरा असर नहीं मिलेगा। ऐसा एक सिंपल थिंग, आपको तो चूल्हा जलाने का, समझो आप चूल्हा जला रहे हो, लकड़ी रखा है, कोयला भी रखा है, सब कुछ रखा है, जला रहे हो, ऊपर छत में से एक ड्रॉप ड्रॉप पानी उस पर गिर रहा है, उसी जगह पर गिर रहा है आपके चूल्हे के ऊपर, तो आपको उतना पावरफुल अग्नि मिलेगा क्या? अग्नि मिलेगा, लेकिन वो कैसा रहेगा, ऐसा इधर बुझा, थोड़ा सा धुआं आएगा थोड़ा सा। अगर आपको सही अग्नि चाहिए पूरा, तो पहले क्या बोलेंगे, एक अग्नि चालू करने के पहले काम करो, ऊपर जाओ उसको बंद करो, पहले जहां से पानी लीक हो रहा है ना उसको पहले रोको। जब रोकेंगे तब आप जो एफर्ट कर रहे हैं ना उसको पूरा अग्नि जलेगा। उसी तरह से जगाई मदाई ने बहुत भयंकर पाप किए थे, इतने भयंकर पाप किए थे कि हम लोग और आप लोग विचार भी नहीं कर सकते, इतना उन्होंने पाप किया था। चैतन्य महाप्रभु के समय पे दो ऐसे भयंकर आदमी थे जो कृष्ण के जन्म पे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु थे, और राम के जन्म पे वो रावण कुंभकर्ण थे, और कृष्ण के अवतार में वो दंतमकर शिशुपाल थे। वही आए वापस चैतन्य महाप्रभु के समय, जगाई मदाई बंद कराए, और वो एक दिन में इतना पाप करते थे कि दुनिया के सारे लोग मिलकर पूरी जिंदगी में जितना करने सकते उतना एक दिन में करते थे। उनका कोटा था, इतने लोगों को रेप करना, इतने घर जलाना, इतने लोगों को मारना, इतना शराब पीना, ऐसा भयंकर पाप करते थे। यमराज भी बहुत परेशान हो गए थे उनका रिकॉर्ड रखते रखते। केवल रिकॉर्ड रखना नहीं है, उसका दंड भी देना है उनको ना, कितना बड़ा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, इतने सारे पाप, इतना दंड देना है तो कितना बड़ा काम रहेगा। इट्स अ बिग मैनेजमेंट ना टू ऑल्सो रिकॉर्ड एवरीथिंग व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट रिएक्शन टू गिव। तो वो जगाई मदाई को भगवान ने आलिंगन दिया नित्यानंद प्रभु के रिक्वेस्ट से, बोला इनको माफ कर दो। तो भगवान ने उनको गले लगाया तो सारे उनके पाप भगवान के शरीर में आए। भगवान का गोल्डन बॉडी था ना, वो काला हो गया चैतन्य महाप्रभु। तो जब दोनों को गले लगाया तो पूरे काले हो गए, कंप्लीट एकदम सिनफुल। तो भगवान ने बाद में बोला स्टार्ट कीर्तन। तो भक्तों ने प्रेम कीर्तन शुरू किया, बहुत प्रेम से सब लोग गाने लगे। तो धीरे धीरे सब काला रंग उतर गया, वापस गोल्डन हो गए। तो भगवान ने क्या दिखाया उनको कि भगवान का नाम जप करने से पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जगाई मदाई को वार्निंग दिया कि तुम्हारे सारे पाप मैं तब स्वीकार करूंगा जब तुम वादा करोगे आज के बाद वो नहीं करोगे। उसके बाद गले लगाया, बाय द वे पहले गले लगाया नहीं उनको, पहले वादा करो कि आज के बाद पाप नहीं करोगे। तो ऑलरेडी भगवान का चक्र देख के वो डर गए थे, तो तुरंत वादा कर देखे हम लोग नहीं करेंगे इसके आगे। फिर भगवान ने पैर से चरणों से उनको उठाया और फिर गले लगाया। तो पहले प्रॉमिस लिया कि पाप नहीं करेंगे, फिर गले लगाया। तो भगवान से गले मिलना है तो पहले पाप छोड़ने का प्रॉमिस देना पड़ेगा, और तब जाकर भगवान के नाम का असर उन पर हुआ। नहीं भगवान छह महीने में छोड़ देंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो बोलते थे छह महीने के बाद मिलो अभी मत मिलो। ऐसा है तो आपके प्रश्न का उत्तर यही है, भगवान के नाम में पूरी शक्ति है, लेकिन आपको वो शक्ति को लेने के लिए पहले योग्य बनना पड़ेगा। तो फ्री लॉलीपॉप नहीं है कि आप हफ्ते भर अपना पाप करते रहो, हफ्ते में एक बार माफी मांगते रहो, फिर वापस पाप करने के लिए फ्री, फिर एंड में वापस माफी, फिर पाप करने के लिए फ्री, वो सब बहुत गड़बड़ मामला है। वी आर चीटिंग गॉड बाय दैट ना। एक ही बार प्रॉमिस करना है आज के बाद नहीं, फिनिश्ड। ऐसा नहीं आज करूंगा फिर कल माफी मांगूंगा फिर परसों करूंगा फिर परसों आप माफी मांगूंगा। भगवान को चीट, भगवान को समझता नहीं क्या, वो इतने लो है क्या भगवान, उनको समझता नहीं आप लोग, आपके मन में क्या है, कैसी कृपा मिलेगी हमको ऐसे। हाउ कैन गॉड बी मर्सीफुल ऑन यू वेन वी आर चीटिंग टू गॉड। वेन वी से वंस इन फॉर ऑल कि यस आई विल स्टॉप सिनिंग, देन इज मर्सी विल फुल्ली कम अपॉन, एंड इफ यू प्रॉमिस हिम एंड फॉलो फॉर सम टाइम एंड देन यू मेक अ मिस्टेक अगेन, यू लूज द मर्सी अगेन, अगेन यू हैव टू रेक्टिफाई, कम बैक ऑन द रोड एंड देन अगेन यू विल गेट द मर्सी। यू कैन से आई विल फॉल डाउन एंड प्लीज मर्सी शुड फॉल डाउन विद मी ऑल्सो, शुड अकंपनी मी वेर एवर आई फॉल। नो, मर्सी इज ऑन द मेन स्ट्रीट ओनली, मेन हाईवे। इफ यू आर ऑन द हाईवे देन मर्सी विल बी ऑलवेज विथ यू, इफ यू फॉल डाउन फ्रॉम हाईवे देन मर्सी विल नॉट बी अवेलेबल देयर, समथिंग एल्स विल बी अवेलेबल, माया देवी Saturn will be available there. Take care of you. So be very careful in maintaining your consciousness. Do all that necessary things to maintain purity in your consciousness. Only with pure consciousness you can see God. Premanjana churita bhakti vilochanena santa sadaiva hridayeshu vilokayanti. With love and devotion when you will make your consciousness pure, then you can visualize Lord in your heart constantly. जब प्रेम की दृष्टि से आपकी चेतना शुद्ध हो जाएगी भक्ति से, तब आपके हृदय में आप भगवान का दर्शन हमेशा कर सकते। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, हमेशा के लिए भगवान का दर्शन संत लोग हृदय में करते रहते हैं, क्योंकि उनकी चेतना आईने की तरह साफ रहती है, कांच की तरह। लेकिन प्रेम का अंजन लगाना पड़ता है, तभी हो जाता है। दैट इज द फॉर्मूला। यू कांट से कि मैं सब कुछ करते रहूंगा, भगवान का दर्शन भी होना चाहिए, नहीं हो सकता है। हाउ इट इज पॉसिबल? डू यू गिव एडमिशन टू 12th फेल स्टूडेंट्स इन द कॉलेज? वो आके 12th फेल स्टूडेंट की माँ आपके चरणों में रो रही है, मैडम प्लीज मैडम इतना तो कृपा कर ही दो, मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा, पूरा रास्ते पे आ जाएगा। मैडम 12th फेल हुआ तो क्या हुआ, होशियार लड़का है वो करेगा पढ़ाई नर्सिंग का, तो आप एडमिशन दोगे उसको? 12th को पास तो करना ही पड़ेगा उसको, गवर्नमेंट रूल, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे को बहुत इच्छा है देने की आपके लड़के की, लेकिन गवर्नमेंट रूल है, वो आपको नहीं दे सकते एडमिशन, है ना? नहीं मैडम मेरा 18 साल बच्चे का पुरानी है, फिर भी ले लो उसको आप। तो आप क्या करते हो उसको, कार्तिक को क्या किया आपने, एक साल आगे रखा ना उसको, आपका एज लिमिट पूरा नहीं हुआ। यू कांट हेल्प इट, यू हैव टू, रूल इज रूल, सिंपल। यू कांट जस्ट ओवरटेक द रूल एंड डू व्हाटएवर यू फील लाइक डूइंग, एंड यू विल अल्टीमेटली आप हाँ हाँ ले लोगे उसको, तो उसको यूनिवर्सिटी एग्जाम को बैठने को देगा नहीं, फिर उसका वैसा भी पैसा और ईयर दोनों वेस्ट है। तो आप करेंगे तो उसका लाभ एंड में नहीं मिलेगा उसको। तो यहाँ चीटिंग करके आप दीक्षा ले लोगे, तो उधर दरबार में जब एंट्री करने का समय आएगा ना, तो आपको वहां से भगाया जाएगा, आप चीटिंग करके दीक्षा लिया था, आउट, पहले यहां से निकलो। वो गेट पे आप चीटिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे गुरु को चीटिंग कर सकते हो आप, अरे हाँ मैंने 16 माला जब किया है सर, मैं मांस भी नहीं खाता हूँ, मैं शराब नहीं पीता हूँ। वो कभी आपको देखने के नहीं आया गुरुदेव कि आप क्या करते हो, मैं टीवी देखता नहीं हूँ, मैं नॉनवेज खाता नहीं हूँ, मैं सब कुछ नियम पालन करता हूँ, मैं 6 महीने से 3 साल से 5 साल से कर रहा हूँ। बाकी भी लोग बोलते हाँ सर मैंने भी देखा है कि ये करता है, तो वो भी चीटर ये भी चीटर, और आपका दीक्षा हो जाता है, आपका अमुक तमुक नाम विश्वरूप दास मिल जाएगा आपको नाम। लेकिन जब भगवान के दरबार में जाने का समय आएगा ना, तो वहां से आपको निकाला जाएगा। यू कैन नॉट चीट, यू कांट चीट एवरीबडी ऑल द टाइम, समटाइम यू फेल इन योर ग्रेट चीटिंग एफर्ट्स, एंड यू कांट चीट गॉड, यू कैन चीट योर सेल्फ नॉट गॉड। इसलिए इस जीवन में भगवान को, भगवान ने आपको जो दिया है उसको संभालना, क्योंकि आपके धरोहर नहीं है, वो भगवान की प्रॉपर्टी है। आपकी चेतना जो है, आपका जीवन जो है, ये भगवान की प्रॉपर्टी है, ये किसी की दी हुई प्रॉपर्टी है, उसको स्पॉन्डर करने का, उड़ाने का, दांव पे लगाने का आपको अधिकार नहीं है। केवल संभाल सकते हैं उसको आप। ट्रस्टी का मतलब क्या होता है? ओनर नहीं होता ट्रस्टी, मतलब विश्वस्त का मतलब क्या होता है कि ये इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है उसके आप ट्रस्टी हो, मतलब इसका गार्डियन आप हो, उसके मालिक नहीं हो आप। उसका पार्ट निकाल के बेच नहीं सकते डॉक्टर शानबाग, क्योंकि वो हॉस्पिटल के ट्रस्टी हैं। चलो भाई एक दुकान बेच के पैसा बना लो, मैं ट्रस्टी हूं ना, मेरे को अधिकार है साइन करने का, तो मैं जेल में जाऊंगा तुरंत। मेरा काम एक ही है ट्रस्टी के रूप में, वो बिल्डिंग को संभाल के रखे, उसका जो पर्पज है उसको इंटैक्ट रखे, वही मेरा अधिकार है बस। उसको मिसयूज करने का मेरा अधिकार नहीं है। वो कोई 2-4 रूम खाली करके मैं अपना रेंटल उसको रखूंगा, उसको रेंट लेके जेब में डालूंगा, क्योंकि मैं ट्रस्टी हूं ना, मेरे को अधिकार है करने का। तो किसी न किसी मेरे को पकड़ के जेल में डाल देंगे, मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी बाय ट्रस्टी, ब्रीच ऑफ कंडक्ट, है ना? ऐसा होता है ना, ऐसा है। तो हम सब लोग इस बॉडी के ट्रस्टी हैं, इस लाइफ के ट्रस्टी हैं, ट्रस्टीज ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी। एंड योर जॉब इज ओनली टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ दिस बॉडी एंड ग्रो इट टू द एक्सटेंट दैट यू कैन मीट गॉड एट द एंड ऑफ दिस लाइफ। एवढं बोलून माझं भाषण संपवतो। और कोई प्रश्न है किसी का? बाय मिस्टेक अगर आपका 3 महीने का बच्चा गर्म तवे पे बैठता है तो तवा उसको जलाएगा कि नहीं जलाएगा? बाय मिस्टेक आपका 3 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा उंगली सॉकेट में डालता है, शॉक लगेगा या नहीं लगेगा? वेदर बाय नोइंगली और अननोइंगली, इवन यू पुट योर फिंगर इन द सॉकेट, शॉक लगेगा ना आपको, ऐसा ही है वो, जाने में अनजाने में आग को हाथ लगाओगे तो आग गलाएगा आपका हाथ को, ऐसा है वो। अभी मैंने आपको नॉलेज दिया ना, देखो जब तक आपको नॉलेज देता था आप समझ सकते हैं कि आपको नॉलेज नहीं था, वो क्या करे अनजाने में करता था, लेकिन आज मुझे बताने की प्रेरणा क्यों हुई बताओ, मैं कुछ सोच के नहीं आया था कि आपको बिस्किट के बारे में बताना है आज, कैसा बात शुरू हुआ आज का ये, ऐसे ही बाय द वे किस चीज के ठंड पानी से बात शुरू हुआ, तो ये तो निश्चित बात है कि मैं घर से सोच के नहीं आया ठंडा पानी से बात करना है मुझे आज यहाँ पर, आप ठंडे पानी प्रवचन देना है आज, तुम्हारा प्लान नहीं था ना, आई डिडंट प्लान लाइक दैट, दैट मीन्स इज गॉड डिजायर टुडे, इज गॉड्स डिजायर दैट आई शुड स्पीक ऑन दिस सब्जेक्ट मैटर एंड शेयर विथ यू द नॉलेज, तो भगवान ने किसी न किसी बहाने आज आपको नॉलेज दे दिया अभी आज के, तो इसलिए अगर आप सिंसियर हो, अगर आप सिंसियर हो, जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं उनको ये पता भी नहीं होता है कि सिगरेट पीना पाप है, शराब पीना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, आप इंग्लैंड में जाओ, अमेरिका में जाओ, वो मैं पार्क में गया था इंग्लैंड में उधर और बैठा था, तो मैं देखा कि तीन जनरेशन एक साथ में बैठे हैं, ग्रैनी भी बैठी है, लड़की भी बैठी है उसकी, उसकी लड़की के तीन बच्चे, लड़कियां लड़के सब बैठे हुए हैं और सब मिलके एक सिगरेट शेयर करके बार बार पी रहे हैं, एवरीबॉडी स्मोकिंग, ग्रैनी स्मोकिंग, देन शी इज गिविंग टू डॉटर, डॉटर इज गिविंग टू देयर स्मॉल 13-14 ईयर डॉटर, एंड एवरीबॉडी स्मोकिंग एंड दैट सिगरेट गॉट ओवर, देन दे ब्लू टू सिगरेट्स अप एंड देन दे वर शेयरिंग एवरीबॉडी, दे डोंट इवन नो दिस इज रॉन्ग, उनको पता ही नहीं गलत है करके, जैसे एक शादी किया और तुरंत डिवोर्स दे दिया और तुरंत दूसरा शादी कर दिया, फिर तो उसको भी डिवोर्स दिया और थर्ड किया, फिर फोर्थ किया, फिफ्थ किया, उनको पता ही नहीं कि ये पाप है, क्या है यूज एंड थ्रो, यू डोंट लाइक थ्रो इट, यू लाइक इट कीप इट, ये उनका फिलोसफी है यूज एंड थ्रो, उनको पता ही नहीं है कि धर्म क्या होता है, उनको पता ही नहीं है धर्म के नियम क्या होते हैं, नॉलेज ही नहीं उनको, लेकिन कहीं ना कहीं जीसस क्राइस्ट आए, कहीं ना कहीं मोहम्मद पैगंबर आए, कहीं ना कहीं संत लोग आए और उनको कुछ सिखाया, समन्स दिया, कुछ स्क्रिप्चर पैदा हो गया, गाइडेंस भगवान देते रहते हैं, डोंट थिंक इतना बारबरिक समय था तभी मोहम्मद पैगंबर वहां पैदा हुआ ना, वहां गाइडेंस दिया ना लोगों को, ये मत करो, ये गलत है, ये मत करो, तो भगवान आपको मनुष्य रूप में ज्ञान देने की व्यवस्था करते ही करते हैं, आप सुनते हो कि अनसुना कर देते हो ये आपके हाथ में, आपको भगवान नॉलेज देते ही, आप देखो आप जीवन का एक पूरा पर्चा निकाल के देखो, आपको याद आएगा कि कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई उपदेश करने वाला मिला ही है, आपको सुनने को मिला है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और आप बहुत भाग्यवान हो तो आपको भक्ति विधान में हर हफ्ते को सुनने को मिलता है कुछ ना कुछ, मॉर्निंग प्रेयर में, फेस्टिवल में, इधर उधर सब अच्छी अच्छी बातें जो आपके जीवन में अनुकूल है वो आपको सब जगह सुनाई पड़ रही है, इंटेंस रूप में बार बार आपको सुनाने को मौका मिल रहा है ना आपको, और कुछ लोग बोल रहे हैं हे हमारे लिए नहीं है तो चलने दो अपने को क्या करना है, और कुछ लोग एकदम गंभीर से सुन रहे हैं, हाँ ऐसा क्या, ओ आई शुड चेंज माई लाइफ, पेशेंट आके बोलता है आई शुड चेंज, स्टाफ बोलता है नो आई शुड चेंज नाउ एंड ही इज चेंजिंग, तो आपको भगवान तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, भगवान आपको किसी न किसी माध्यम से आपको नॉलेज दे रहे हैं कि आपको ये नहीं करना है और ये करना है, तो कितना पिकअप करते हो भगवान के उपदेश के अनुसार और कितना छोड़ देते हो उसके अनुसार आपको फल मिलता है, सिंपल, और एक बार आपको अच्छी चीज मिलने के बाद में आपने उसको उड़ा दिया, दूसरी बार वो अच्छी चीज आपको नहीं मिलती है, एज अ मदर आप क्या करते हो, बच्चों का आपने एक 30,000 रुपए का पार्कर पेन ला के दिया और नेक्स्ट डे उसने उसको तलवार की तरह यूज कर बच्चों के साथ खेलने के डंडे की तरह यूज करके तोड़ के लाया उसने, तो अगले बर्थडे को आप उसको 30,000 का पेन गिफ्ट दोगे क्या, नहीं दोगे, आप 10 रुपए का पेन ला के दोगे, ये तुम्हारे लिए यही लायक है इसको यूज करो, वो गोल्ड प्लेटेड दीप वगैरह नहीं दोगे उसको, आपने दिया था उसको प्रेम से, इतना सोच के मेरे बच्चे को बेस्ट पेन दूंगी मैं, और पैसा इकट्ठा करके बर्थडे के दिन उसको गोल्ड पेन का बहुत बढ़िया 30,000 रुपए का पेन दिया आपने उसको, नेक्स्ट दिन तोड़ के घर पे लाया तो क्या बोलेगा आप उसको, नॉट नेक्स्ट टाइम, आपको 15,000 का मोबाइल ला के दिया बच्चे को आपने और नेक्स्ट दिन तोड़ के लाएगा तो आप उसको नेक्स्ट टाइम 15,000 का फोन ला के दोगे, बोले 1,500 रुपए का दूंगी अभी नेक्स्ट टाइम, है ना, जैसे आप करते हो वैसे भगवान का नियम है, उसी टाइप का है, आपने उन्होंने आपको कुछ कीमती वस्तु दिया आपने उसका मिसयूज किया तो अगले बार आपको कीमती वस्तु नहीं मिलेगा, कुत्ते का जन्म मिलेगा, बकरे का जन्म मिलेगा, मछली का जन्म मिलेगा, मनुष्य का नहीं मिलेगा। तो आपको दिया था उन्होंने, आपने मिस यूज किया उसको, तो फिर वही बनना पड़ेगा जिसकी तरह आप रहे इस लाइफ में, उसकी तरह आपको आगे जन्म मिलना पड़ेगा। अगर बहुत मांस खाया मतलब क्या, आप टाइगर शेर फॉक्स इसकी तरह रहे तो आपको वो शरीर प्राप्त होगा। ऐसा है, रोड पे हवाई जहाज चलाओगे आप, उनको जो आपको मैंने हवाई जहाज दिया, सोचो अगर आप ध्यान से सोचो, सो मत, थिंक वेरी केयरफुली कि मैंने आपको हवाई जहाज दिया और आपने उसको हाईवे पे चलाना चालू कर दिया तो मैं क्या करूंगा, आपसे हवाई जहाज ले लूंगा, आपको एक कार दे दूंगा। रोड को चलाना है, रोड चलाना है आपको, तो कार उसके लिए योग्य है। हवाई जहाज हवा में चलता है, यू आर ड्राइविंग हवाई जहाज ऑन द रोड, तो हवाई जहाज आपसे ले लूंगा एक सिग्नल पे और आपको कार दे दूंगा, फिर आप कार चलाएंगे। नुकसान किसका हुआ, आपको हवा में उड़ने की चीज दी थी, 2 घंटा में दिल्ली पहुंचने के लिए आपको एक साधन दिया था मैंने, तो उसको लेकर आप रोड पे चला रहे हो और 24 घंटे के बाद पहुंचने का आपका प्लानिंग है उसका, तो एक सिग्नल पे वो हवाई जहाज निकाल दिया जाएगा और आपको कार दिया जाएगा, 4 व्हीलर, है ना। ये उदाहरण को बहुत सोचो आप, समझो उसको, चिंतन करो। आज आज के दिन ना 19 मार्च वेनसडे, आज शाम को 4 बजे से रात को सोने तक इस पर चिंतन करो आप, ये एग्जाम्पल क्या है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये मनुष्य जीवन जो है वो हवाई जहाज की तरह है। आपको बहुत जल्दी भगवान से मिला सकता है, लेकिन आप रोड पे चल रहे हो उसको लेकर, तो फिर आपके हाथ में फिर गाड़ी आएगा, वो 24 घंटे बाद पहुंचेगा। आप विचार करो इसके ऊपर कि हमारे जीवन का हवाई जहाज कहाँ जा रहा है, कौन से रास्ते पे है अभी, आकाश में है कि रास्ते में है कि हाईवे पे है कि गली में पड़ा हुआ है। अभी वो हवाई जहाज कहां ढूंढ रहे हो लोग, वो किधर अफगानिस्तान में किधर कैंप में है, वो संभाल के उतारा है उधर अफगानिस्तान में, ये सब लोग समुद्र में ढूंढ रहे हैं ईस्ट और वेस्ट में, लेकिन वो एक जगह पर ऑलरेडी उतार के उन्होंने सबको कैप्चर में रखा हुआ है। इस तरह से हमारे हवाई जहाज को संभाल के रखो, कोई उसको हाईजैक ना कर ले, कोई माया, कोई पाप, कोई कुसंगति हमारे मनुष्य जीवन के विमान को हाईजैक न करे, वो सही जगह पर सही दिशा में जाए, अच्छी तरह से नियंत्रित सुरक्षित रूप में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए। ये आपके हाथ में है, याद रखना, हरे कृष्णा। और अगर आप सिंसियर हो, गलती से आपके हाथ से पाप हो गया हो, तो उसको माफ कर सकते हैं भगवान। कभी कभी क्या होता है ना, आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हो लेकिन आपका पैर केले के पत्ते पर पड़ता है और आप फिसल के गिर जाते हो, तो उस समय लोग आपको हाथ देके उठाते हैं, क्योंकि आपने जानबूझकर फिसलने का प्लानिंग नहीं किया था, अचानक एक्सीडेंट हो गया आपका, तो बहुत लोग आपके आपकी हेल्प करेंगे आपको। लेकिन अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे तो आपको लोग हेल्प नहीं करेंगे, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो लोग आपको हेल्प करने को आएंगे, लेकिन अगर देखेंगे कि ड्राइवर ड्रंक है तो फिर उसको हेल्प नहीं करेंगे, ये तो मस्ती कर रहा है, तो इसको दंड मिलना ही चाहिए, मरने दो साले को, ऐसे बोलेंगे आपको। उसी तरह से अगर आप गलती से गिर गए, फिसल गए, तो आपको भगवान कभी माफ दंड नहीं देंगे उसका। अपि तेचु सदुराचारो भजते मन अनन्य भाग, मगर ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं, जो गलती से कभी उसके हाथ से गलती हो जाती है तो उसका भगवान ने गीता में जिक्र दिया है कि ऐसे व्यक्ति को मैं खुद बचाता हूं, क्योंकि उसका जो माइंड है ना वो सही जगह पर है, एक बार गलती उसकी हो गई भक्ति में आने के बाद भी, फिर भी मैं उसको बचाता हूं। अपि चेतु स दुराचारो भजते मम अनन्य भाग, साधु रेव मंतव्य, ऐसे व्यक्ति को मैं साधु ही समझता हूं उसके हाथ से गलती होने के बाद भी, क्योंकि उसका जो एम है वो अच्छा था, एम गलत नहीं था, वो थोड़ा सा गलती उससे हो गया, थोड़ा सा वो केयरलेस हो गया, थोड़ा सा अटेंशन नहीं था उसका, तो वो फिसल गया, लेकिन मैं उसको हाथ देके उठाता हूं, वापस उसका जीवन आगे अच्छी तरह संभालता हूं। जानबूझकर कि वो व्यक्ति को वो माफ नहीं करते, बोले अभी 25 साल जप किया मैंने, 28 साल हो गए उसको भी जप करके, चौधाई भी नहीं पिया, लसन भी नहीं खाया, और वो भजन किया और वो प्रवचन भी किया और शास्त्र पढ़ा, ये किया वो किया, अभी 1 साल ना मैं थोड़ा सा मजा करके लेता हूं, 1 साल दारू पी के सब आनंद लेता हूं, फिर अगले साल फिर जनवरी से भक्ति करूंगा वापस। सब प्लैंड अगर कोई करेगा ना तो उसको फिर फटके ही गिरते भगवान के, ज्यादा गिरते, क्योंकि सब मालूम होने के बाद भी वो जान बूझ के अगर ऐसा प्लानिंग कर रहा है, योजना बना रहा है उसकी। क्राइम के अंदर भी अलग अलग रूप होते हैं, अगर कोई ऐसा बाय मिस्टेक क्राइम करता है ना तो इतना दंड होता नहीं, लेकिन योजनाबद्ध रीति से वो क्राइम करता है ना उसको अधिक दंड बताया गया है। शिस्तबद्ध रीति से योजना बना के प्लान करके प्लॉट बना के पूरा उसने बॉम्ब ब्लास्ट किया है तो उसको बहुत, और एक्सीडेंटली कोई उसके अंदर ऐसा ही बोला कि तू तो ये सामान लेके वहां दे दे, उसको पता भी नहीं था बॉम्ब था उसके अंदर, वो ऐसा ही गरीब था बेचारा, 100 रुपये लिया वो सामान यहां से वहां पहुंचता गया, तो उतना दंड नहीं होता है उसको, लेकिन सूत्रधार को बराबर पकड़ के दंड दे दे, क्योंकि उसने पारी योजना बना के जानबूझ के सब काम किया था। दुनिया में भी यही नियम है ना अपना दंड का, आपके घर में बच्चों को भी वही नियम है, गलती करते तो ठीक है लेकिन वो रोज समझ बूझ के पेंसिल चोरी करता है, मालूम है उसको नहीं करना चाहिए लेकिन जानबूझ के जाके पेंसिल चोरी करके लेके आता रोज, तो उसको माँ बाप अच्छा दंड देते हैं उसको, क्योंकि प्रवृत्ति खराब है उसकी इसलिए उसको दंड देते हैं। वैसे ही गलती करना कोई बुरी बात नहीं, तो एर इज ह्यूमन, एवरीबडी मेक्स मिस्टेक, बट जो जानबूझ के सोच समझ के करता है ना उसके लिए माफी नहीं, पता चल गया है तो आप टेम्पटेशन छोड़ दो, टेम्पटेशन उसका अच्छे अच्छे बिस्किट का एडवर्टाइज में आता है, बिस्किट वो हाईवे पे बड़ा बड़ा एकदम बड़े बड़े पिक्चर रहते हैं उसके ऊपर, थोड़ा बटर भी रहता है उसके ऊपर, एक चीज का स्लाइस भी रहता है उसके ऊपर, और वो हीरोइन खाती रहती है उसको ऐसे एकदम, तो वाह क्या बात है ये बिस्किट मैं कब खाऊंगा ऐसा आपको लगेगा, लेकिन संभाल के रहो, नेचुरल गिफ्ट में आ जाओ, वहां पर आपको बहुत बढ़िया बढ़िया स्पाइस एंड स्वीट एंड ऑल दिस अलग अलग टाइप का बिस्किट वहां मिलता है, तो हम लोग खाते हैं उसमें से, लेकर बिस्किट की प्यास बुझाते हैं, थोड़ा महंगा रहता है लेकिन अच्छा रहता है, नेचुरल आइटम से बनता है, वो लेते हैं और खाते हैं। हाँ आपको पता है क्या वो है ना कुरकुरे, वो कुरकुरे को आप कभी लाइटर जलाओ, लाइटर और उसको जलाओ उसके अंदर क्या बचेगा मालूम है, प्लास्टिक। अभी आप बोलेंगे प्लास्टिक क्यों यूज किया उसके अंदर, कहां से आइडिया आया उनको प्लास्टिक का, क्योंकि कुरकुरे 6 महीने के बाद भी ऐसे दिखने चाहिए, 8 महीना पुराना भी कुरकुरे एकदम फ्रेश दिखना चाहिए, तो प्लास्टिक बनाने का आइडिया किसी राक्षस के मन में आया, उसने उसको बराबर एग्जीक्यूट किया और ऐसा बनाया उसको कि आपको लगेगा 6 महीने के बाद भी ऐसे ही फ्रेश, लेकिन खा क्या रहे हो आप, प्लास्टिक खा रहे हो, आप प्रूव कर सकते हो उसको, ऐसा जला के देखो आप तो मालूम पड़ेगा आपको, प्लास्टिक है उसके अंदर, प्लास्टिक कैन इमेजिन, लोगों को उल्लू बनाने के लिए हमारे जैसे लोगों को लोग क्या क्या नहीं करते, इमेजिन कि लेज और क्या क्या वो चिप्स वगैरह बेचते हैं, वो व्हाट्सएप में पूरा उसका डिस्क्रिप्शन आया था कि ये रेडीमेड चिप्स जो है ना बड़ी बड़ी कंपनी के, इतने बड़े मल्टीनेशनल कंपनी करोड़ों रुपए का बिजनेस करते हैं, किस चीज से बनाते हैं, आलू के चिप्स उसके अंदर आलू है ही नहीं, चावल की मड़ी गेहूं की मड़ी जो डिस्कार्ड प्रोजेक्ट है उसको सबको इकट्ठा करके उसका डो बनाते हैं, उसको येलो कलर डालते हैं, और जो माल केवल गटर में फेंकने लायक होता है ना माल उसको ये लोग इकट्ठा करते हैं और बढ़िया कॉम्बिनेशन बना के उसका रंग बंग बना के उसको तलते हैं, शेप देते हैं उसको, वो लाइन लाइन डालते हैं उसके क्या क्या चौकोनी और लाइन डालते हैं, हाँ नो पोटैटो इन दैट, नो पोटैटो, ब्रांडेड की ही बात कर रहा हूँ मैं, मैं आपको दिखाऊंगा, आई विल शो यू अ फुल डिस्क्रिप्शन कि व्हाट ऑल आइटम्स आर देयर इन दैट एक्सेप्ट पोटैटो, डोंट ईट यू मेक एट होम, व्हाई यू आर सो लेजी, इफ यू आर फास्टिंग फॉर गॉड व्हाई यू आर सो लेजी, व्हाई यू बाय रेडीमेड थिंग्स एंड ईट, यू आर रिस्किंग योर फास्टिंग ऑल्सो, यू आर रिस्किंग योर फास्टिंग विथ व्हाट ऑयल दे आर यूजिंग, दे मस्ट हैव फ्राइड समोसा यस्टरडे, दे मस्ट हैव फ्राइड फिश इन दैट ऑयल, द सेम ऑयल इज यूज फॉर फ्राइंग योर पोटैटो, सो कॉल्ड पोटैटो चिप्स, व्हाट फास्टिंग इज दैट वैल्यू ऑफ फास्टिंग, टेल मी ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फास्टिंग इफ यू डोंट नो व्हाट यू आर ईटिंग, इसलिए फास्टिंग के दिन तो कभी भी एक भी वस्तु बाहर के नहीं खानी चाहिए, फास्टिंग के दिन एक वस्तु बाहर के नहीं खानी चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो वॉट चीज अवेलेबल, बेटर टू ईट फ्रूट्स एंड मिल्क एंड कीप यूर फास्ट रादर देन बाइंग रेडीमेड, अरे हा चूड़ा उपवासाचा है, हा चाहता पैकेट, हा इट्स ऑल डेंजरस थिंग, वो साबुदाने का चूड़ा एकादशी का लेकिन कोचा तेल में तला हुआ है, हू नोज उसने उसमें समोसा तला होगा और वो भी साबुदाना तला होगा, हाउ डू यू गारंटी दैट, सो never, never ever eat such things. Never. Big risk that you are taking. You don't go on big names. The bigger the names are, the more cheating is going on. Scientifically, with great research and great dimag, with great planning, the more big you are, that means more big dimag you have got. So more big dimag with big cheating can be done. You want to know something, you want to go in Taj Hotel, you go to eat food. I told you before also. In Taj Hotel you go, you Oberoi you go, in Presidency you go, big big hotels you can go, Marriott you can go. They come, they offer you order some juice, for example, welcome juice they give you. Huh? And suppose there's like Pina Colada, very costly juice you ordered for your party. So they will serve you Pina Colada, very cold, nice, chilled with cream and everything, everything. So uske baad mein kya hoga? All of you, because you are in 5-star hotel, you think I should eat only half. Because if I drink full, people will laugh at me. It's a culture that you only drink 2 sips and you leave it. And then the waiter will come. And the waiter will come and he collect all the glasses nicely, very systematically. He's trained for picking up the way he picks up and takes it back. And everything he collects back in the jar. And then he puts ice cubes in that. And cleans the glass nicely with nice napkin. He will mop the glass, make it dry completely. And again fill up 3/4. And second service will bring you. And these are, I am not joking. I have told you, I have been told all these things with our devotee caterers and devotee chefs who are working in big hotels. So this is what is happening inside. They also drink. And they again put it back and serve you. When they serve you, you feel that such a beautiful glass. Flask is there, beautiful clean napkin, you know, paper, everything so beautifully. You feel so high class it is. This is a fact. This is how they make money and business. No? अभी आपने आधा आधा glass पी के छोड़ दिया ऊपर, तो 4 liter तो ऐसे ही गटर में जाएगा. तो recycle. And you pay huge amount of money to drink and eat all those things. Who sees behind what is happening? No one knows. So don't risk your life such like that. That's why the best 5-star and 7-star and 20-star food that you can eat is where? At your house. The best 20-star food is available in your house. And don't look for hotels. And raste ka gaadi pe mat jao. But just taste nice. Don't go behind that. You don't know. अभी मेरे पास बहुत कहानी है, खोलू का एक एक कहानी. बीच में पानीपुरी का पेपर में बहुत बड़ा आया था. हाँ, पानीपुरी का बड़ा कहानी आया था बीच में, मालूम है ना आपको, पेपर में कितने दिन चला था, कितने दिन चला वो कहानी पानीपुरी का. बिकॉज यू लाइक पानीपुरी ना, सो ईट पानीपुरी. हाँ, पानीपुरी घर पे बनाओ और घर पे खाओ, शायद उतना कान से धुआं नहीं निकलेगा लेकिन घर का अच्छा रहेगा आपका. हमको क्या था, पानीपुरी खाने के बाद कान से धुआं निकलना चाहिए, तो पानीपुरी बेस्ट है. ऐसा लगता है आंख से पानी और कान से धुआं, जब निकलेगा तो फिर पानीपुरी बेस्ट. और वो भैया ही बनाते हैं, उसका हाथ में क्या जादू है मालूम नहीं. वो भैया का हाथ में घर में लेके आऊंगा तो मेरे घर में भी वो टेस्ट आएगा ऐसा लगेगा आपको. लेकिन भैया का हाथ कहां पर फंसा हुआ आपको मालूम नहीं है. यू डोंट नो. सो एवरीथिंग हैज अ प्राइस. हम लोग क्या बोलेंगे, एक बार पानीपुरी नहीं खाना अच्छा है, लेकिन ये सब नहीं चाहिए. पानीपुरी खुद नहीं खाने से आदमी मरता नहीं है. यू डोंट डाई बिकॉज ऑफ पानीपुरी नहीं खाने से. जिंदगी खराब नहीं होती उससे, खाने से खराब होगी लेकिन नहीं खाने से खराब नहीं होती. ओके माय डियर फ्रेंड्स, बच्चों को वही अच्छा लगता है. ओके बच्चों को वो आइटम इंट्रोड्यूस किसने किया? बच्चा जब गोद में आया तो पानीपुरी का नाम जप करते आया था क्या? वो उसको चाय पानीपुरी इसकी पहचान किसने कराई थी? आपने कराई उसकी पहचान. इसलिए बच्चों का नाम मत लो, आपको दोष लो. पहले अपने आप को पूछो कि मैंने उसको इंट्रोड्यूस क्यों किया उसको. अगर आपने बच्चे को अपने आप में घर पे खाना खाने का ही कल्चर सिखाया था तो पानीपुरी को खाएगा वो. अरे हमारे कल्चर इतना खराब है ना, मतलब आपको आश्चर्य होगा, 6 महीने के बालक को भी सासू जी आएगी बोलेगी बेटा चाय पियोगे, चाय पियोगे करके ठंडा करके उसको चाय पिलाएंगे. फिर चाय का एक बार उसको नशा लग गया ना, तो वो चाय के पीछे भागेगा वो बच्चा, 6 महीने का, उसको पता ही नहीं क्या पिला रहे आप उसको, लेकिन वो भागेगा उसके पीछे, दादी के पीछे भागेगा, दादी चाय दो करके मुझे, और दादी बड़े प्यार से देखो देखो चाय मांग रहा है, देखो कितना चाय चाय कर रहा है, ऐसा करके बोल के कौतुक कर करके उसको फिर वो चाय पिलाएगा उसको, और बाद में बोलेंगे कि देखो बच्चा चाय मांगता है। अरे चाय को इंट्रोड्यूस किया किसने उसको बताओ, बोले वो स्लीवलेस ड्रेस और उसको हाफ चड्डी और स्पेगेटी ड्रेस, उसको इंट्रोड्यूस किसने किया, आपने तो किया। अभी वो 13 साल के हो गए, उसका मेंसेस चालू हो गया, अभी आपको उसका स्लीवलेस ड्रेस देखे बहुत परेशानी होती है, अभी तो इतना बड़ा बॉडी हो गया उसको, लेकिन वो इंट्रोडक्शन किसने किया था, आदत किसने लगाई थी ऐसे कपड़े पहनने की, हमने तो पहने थे। अगर आपको उतना अंडरस्टैंडिंग है, उतना आपके मन में इंटेलिजेंस है, तो शुरू से आप उसको ऐसे कपड़े पहनाएंगे कि जब बड़ी होगी वो जवान हो जाएगी तो भी कवर करके पहनेगी कपड़े, उसका प्लानिंग होगा तो ही बच्चे को जन्म दो, तो बच्चे को जन्म मत दो, यू विल रिस्क योर डॉटर एंड सन इन द वर्ल्ड समवेयर एंड देन यू विल रिपेंट कि मैंने क्यों उसको ऐसा किया वैसा किया, क्यों पिक्चर दिखाया और क्यों घर पे इंटरनेट खोल के दिया उसको, हमने दिया सब उसको, उस कल्चर ने दिया, यही सब दिया, नहीं मांगते हैं बच्चे, मानते नहीं है, लेकिन उसके साथ में आपने कल्चर दिया क्या उसको, शिष्टाचार सिखाया क्या उसको, संस्कृति दिया क्या उसको, तो फिर वो नहीं करेगा। इसलिए हम जिम्मेदार है, हमारे बच्चा जो आज है ना वो हम ही उसके जिम्मेदार है, 100% वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर अ चाइल्ड इज टूडे, डोंट ब्लेम द वर्ल्ड, ब्लेम योर सेल्फ, बिकॉज चाइल्ड वॉज लाइक इनोसेंट फेलो इन योर हैंड्स, कंप्लीटली इन योर हैंड्स, यू कैन डू मोल्ड द वे वट एवर वे यू वॉन्ट। बच्चा कैसे होता है, वो तो एक माथे का गोला होता है, जैसे आप शेप दोगे वैसा बनेगा वो, क्या आप जो सिखाओगे, क्या गलत सिखाओगे, फिल्मी गाना सिखाओगे तो वो सब कुछ सीखेगा, आप भजन सिखाओगे गाली ताली बजाओगे तो भजन गाएगा वो, कि उसको मालूम पड़ा कि भजन गाने पे ताली मिलती है तो भजन गाते रहेगा वो, और फिल्म का गाना होगा वो ऐसा डांस करेगा और आप ताली बजाओगे तो वही करते रहेगा, क्योंकि वॉट एवर इज अप्रिशिएटेड इज एनकरेज्ड। जो वाह वाह करते हो वो सोचते ये अच्छा है, इसमें वाह वाह मिलती है, तो वही करते रहेगा वो। संग बहुत जरूरी है। मुझे अभी भी याद है बचपन में ना हमारी बिल्डिंग के अंदर ना 2 घर ऐसे थे वहां पर घर पे दारू बेचते थे, लास्ट के 2 घर के अंदर क्रिश्चियन लोग जो थे वो गोवा के थे और वो घर में ही लिकर बना के घर पे वो पहली धार वो घर में बना के घर पे ही लोगों को बेचते थे वो। तो हम लोग बिल्डिंग में रहते थे ना, हम लोग खेलते थे इधर, बच्चे इधर जाते थे, कभी वहां पर जाते थे कभी खेलते थे, और देखते थे कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कुछ कुछ लोग उल्टी कर रहे हैं, क्या है सब ये। उसमें से एक आदमी ना पॉश कपड़े पहनकर, व्हाइट शर्ट पहनकर, स्त्री का शर्ट पहनकर, कांजी का नो क्या बोलते हैं उसको, स्टार्च डाल के व्हाइट शर्ट पहन के, गोल्ड चेन पहन के, हाथ में गोल्ड चेन, और आता था वहां पीने के लिए, और वो एकदम स्टाइल से जेब में से ब्रिस्टा और सिगरेट निकाल के उसको करके उसको जलाता था, और मैं उसको देखता था हमेशा ऐसे चाइल्ड आज होता है इनोसेंटली ऑब्जर्व। तब मेरे मन में विचार आता है, तो मैं बड़ा बनूंगा ना तो ब्रिस्टा ही पीऊंगा। हाँ सिंसियरली आई वाज थिंकिंग कि जब मैं बड़ा बनूंगा ना तो इसी तरह से लाइटर से मैं ब्रिस्टॉल सिगरेट पीऊंगा। ये बचपन का इंप्रेशन है बाय द वे, और मैंने जवान होने के बाद ब्रिस्टॉल सिगरेट ट्राई भी किया, क्योंकि तो मेरा बचपन का इंप्रेशन था ना वो स्ट्रांग इंप्रेशन, स्ट्रांग डिजायर एंड स्ट्रांग इंप्रेशन, बाय रेगुलर ऑब्जर्वेशन आई हैड गॉट दैट डिजायर कि मेरे को ये पीना है। और हमारा तो सिगरेट का ही दुकान था पिताजी, तो सिगरेट के दुकान में दुकान बंद करने के बाद में कुछ समय होता था ना दुकान बंद कर घर जाने के लिए, तो उस दुकान बंद करके बीच में मैं वो सिगरेट पी के टेस्ट करके फिर घर जाता था। व्हाई? बिकॉज ऑफ एसोसिएशन, बिकॉज ऑफ कंपनी, आई डिडंट वांट दैट कंपनी बट इट वॉज जस्ट हैपनिंग इन माई लाइफ इन फ्रंट ऑफ मी, तो आई वॉज कलेक्टिंग इंप्रेशन कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। भगवान की दया से बच गया मैं, भगवान ने मुझे हरे कृष्ण में लाया तो मेरा जीवन पूरा सुधर गया, नहीं तो फिर क्या, आई कुड हैव बीन अ स्मोकर टुडे, ब्रिस्टॉल चेन स्मोकर, आई कुड हैव बीन सो मेनी थिंग्स बिकॉज द वे आई वॉज ब्रॉट अप इन माई चाइल्डहुड, आई हैव सीन मर्डर्स, आई हैव सीन गैंग वॉर्स, आई हैव सीन ट्यूबलाइट्स, आई हैव सीन टोडा वाटर गैंग वॉर्स, एवरीथिंग आई हैव सीन इन माई चाइल्डहुड, आई हैव सीन इंटेस्टाइन्स कमिंग आउट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द रोड बाय तलवार, एवरीथिंग आई हैव सीन, आई हैव बीन ब्रॉट अप इन शैतान चौकी बाय द वे, प्रभा देवी खेड गली, सिंपली बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड आई एम सेव्ड, अदरवाइज एवरी पोटेंशियल वॉज देयर फॉर मी टू बिकम अ वेरी बैड गुंडा, एवरीथिंग वॉट आई हैव सीन इन चाइल्डहुड इज ऑल rubbish only. But somehow or other, by the unlimited mercy of the Lord, we came in the company of devotees and the whole life has changed. Now we are moving in class people and going with people who are pure-hearted, selfless. That's why our whole life is changed. So we are also welcoming all of you. You also come in this circle, in this world, where only good people are there. Selfless people are there. Nice people are there. No? Whose company is a pride for you, that I move around with these people. So now our background is already gone in underground. Nobody remembers where I was brought up in. And also I am, suddenly I remember now. But I don't even remember my background. Because I have been given so much wonderful thing in life. I don't even remember anything bad. But still, that's this all ka impression tha mere man mein. So वैसे ही, you have to be careful what your child is exposed to. What is he looking at? What is he watching? You have to be careful about it. Because you don't know what I am watching. Father didn't know. I am watching that fellow with starch shirt, with a shining lighter, stylish lighting cigarette. I was not watching that. ऐसा है। सो बच्चे को जन्म देना बहुत आसान चीज होती है, बच्चे को बड़ा करना अच्छी तरह से बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। तो कुत्ते बिल्ली भी जन्म देते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है? मेल फीमेल कम टुगेदर, चाइल्ड इज बॉर्न, व्हाट इज द ग्रेट थिंग इन दैट? टू रेज अ चाइल्ड इन भक्ति एंड डिवोशन, प्योर हार्टेड लाइफ टू गिव बच्चा, इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। इफ यू कैन डू दैट, योर लाइफ इज सक्सेसफुल, योर चाइल्ड लाइफ इज सक्सेसफुल। जब आप अपने बच्चे को देखेंगे मेरा बच्चा जो है भक्त बन गया, इतना खुशी मिलेगी आपको कि आपको और खुशी लाइफ में इंप्रेस नहीं करेगी, इतना खुशी मिलेगी आपको। व्हेन यू सी योर चाइल्ड अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, प्योर हार्टेड सोल लिविंग हिज लाइफ ग्रेट डिवोशन टू लॉर्ड, तो कितना गर्व होगा आपको, कितनी आनंद प्राप्त होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।
हरे कृष्ण।